अध्याय पांच
शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स सरकार के तीन अंग विधान पालिका कार्यपालिका और न्यायपालिका राज्य के तीन प्रमुख कार्य कानून निर्माण कानून को लागू करना और कानून के द्वारा निपटारा कर रहे हैं। सरकार के कार्यों के इन तीन अंगों में विभाजन को आज सरकार के उत्तम कार्य व्यवहार का एक सबसे उत्तम और कुशल ढंग माना जाता है। इस विभाजन के बिना सरकार निरंकुश और अत्याचारी बन सकती है। यह तीनों कार्य अंतर संबंधित और अंतर निर्भर है, परंतु यह आवश्यक है कि इन तीनों कार्यों को तीन अलग अलग अंगों के द्वारा ही किया जाए। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत यह कहता है कि इन तीन अंगों को एक दूसरे से अलग रखा जाना चाहिए, क्योंकि किसी प्रकार का भी केंद्रीयकरण या एकत्रीकरण व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए बहुत अधिक हानिकारक होता है। सरकार के प्रत्येक अंग की शक्ति को दूसरे अंगों से अलग रखा जाना चाहिए। यह शर्त नागरिक की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। इस अध्याय में हम शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत की प्रकृति का परीक्षण करेंगे, इसकी व्यवहारिकता और आवश्यकता का मूल्यांकन भी करेंगे। शक्तियों के का पृथक्करण परिभाषा और समर्थक सेपरेशन ऑफ पावर्स डेफिनेशन एंड सपोर्टर्स। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत यह कहता है कि सरकार के तीनों अंगों को एक दूसरे से अलग और स्वतंत्र होना चाहिए, क्योंकि इन तीनों का किसी एक या दो हाथों में केंद्रीकरण व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए सदैव हानिकारक और खतरनाक होता है। लोगों और सरकार की सेहत के लिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण शक्तियों का विभाजन विशिष्टीकरण और शक्तियों के पृथक्करण आवश्यक यंत्र होते हैं। शक्ति पृथक्करण के आधार शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत इस सिद्धांत पर आधारित है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति असीमित रूप में भ्रष्ट करती है। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। मॉन्टेस्क्यू ने भी स्वीकार किया कि हमारे अनुभव ने यह दिखाया है कि जिस व्यक्ति को शक्ति मिलती है वह उसका दुरुपयोग करने का प्रयास करता है। वह अपनी सत्ता वैध रूप में प्रयोग करता है जबकि उस पर कुछ प्रतिबंध न लगाए जाएं। किसी एक हाथ में शक्तियों का केंद्रीकरण सबसे अधिक खतरनाक होता है। शक्ति पृथक्करण का अर्थ शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का अर्थ प्रकट करते हुए गैटेल ने कहा है, जो सिद्धांत यह मांग करता है कि सरकार के कार्य शक्तियों की अलग अलग संस्थाओं के द्वारा किए जाएं और प्रत्येक विभाग अपने कार्य क्षेत्र तक ही सीमित रहें, दूसरे किसी के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप न करें और अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रहें। इसको शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत कहा जाता है। द थ्योरी दैट द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी परफॉर्म बाई डिफरेंट बॉडीज ऑफ पर्सन्स दैट इच डिपार्टमेंट शुड बी लिमिटेड टू इट्स ओन स्फीयर ऑफ एक्शन विदाउट इनक्रोचिंग अपॉन द अदर्स एंड दैट इट शुड बी इंडिपेंडेंट विद इन दैट स्पेस स्फीयर इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। एम जी सी विले ने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत की बड़ी व्यवस्थित व्याख्या की है। वह लिखता है, राजनीतिक स्वतंत्रता की स्थापना और स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि सरकार को तीन मुख्य शाखाओं विधानपालिका कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित किया जाए। इन तीनों में से प्रत्येक शाखा को सरकार का निश्चित कार्य वैधानिक कार्यपालिक और न्यायिक सौंपा जाए। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत प्रमुख विचारक थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स मैन थिंकर्स। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू के नाम से जुड़ा हुआ है, परंतु उसका यह अर्थ नहीं कि उससे पहले किसी दार्शनिक ने इसका समर्थन नहीं किया था। वास्तव में यह विचार राजनीति शास्त्र के पिता अरस्तू ने सबसे पहली बार दिया था। उसने सरकार के तीन विशिष्ट कार्यों सोच विचार मजिस्ट्रेटी और न्यायिक की पहचान की थी, परंतु उसने इनके पृथक्करण के पक्ष में तर्क नहीं दिए थे। 16वीं शताब्दी में जीन बॉडिन 1530 से 1596 ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक 1576 में शक्तियों के पृथक्करण के विचार को प्रस्तुत किया और लिखा कि यदि विधानकार और न्यायाधीश एक ही संस्था में अर्थात कानून निर्माण तथा न्याय और दया करने का अधिकार एक ही व्यक्ति के पास हो तो कानून का स्वेच्छाचारी प्रयोग हो सकेगा। न्यायिक प्रशासन भी उचित ढंग से नहीं होगा यदि मुकदमे में सम्मिलित पक्ष स्वतंत्र नहीं होंगे और वे प्रभु सत्ताधारी की शक्ति के अधीन कुचले हुए होंगे। बोदिन के पश्चात 17वीं शताब्दी में जॉन लॉक ने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का समर्थन किया। उसने सरकार की तीन शक्तियों वैधानिक कार्यपालिका और संघीय दैट इज लेजिस्लेटिव एक्सिक्यूटिव एंड फेडरेटिव की पहचान की और यह विचार प्रकट किया कि यदि कार्यपालिका और संघीय शक्तियां एक ही हाथ में रहे तो कोई दुख नहीं होगा, परंतु यदि वैधानिक और कार्यपालिक शक्तियां एक हाथ में हो तो स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं हो सकेगी, इसलिए इनको एक ही हाथ में कभी एकत्रित नहीं रखना चाहिए। शक्तियों के पृथक्करण के संबंध में मॉन्टेस्क्यू के विचार शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को व्यवस्थित रूप में परिभाषित करने और दृढ़ ढंग से वकालत करने का श्रेय फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू को जाता है। उसने जोरदार शब्दों में इस बात की वकालत की कि सरकार की तीनों शक्तियों को तीन अलग अलग स्वतंत्र अंगों के पास होना चाहिए। वह अपने विचार देने में जॉन लॉक के विचारों ब्रिटिश संविधान की कार्यप्रणाली फ्रांसीसी संवैधानिक प्रणाली के व्यवहार और लुई 14वें जिसने यह कहा था कि मैं ही राजी हूँ और इस बात की वकालत की थी कि सरकार को तीनों शक्तियों का प्रयोग मैं ही करूँगा से प्रभावित हुआ। ब्रिटिश व्यवस्था और जॉन लॉक के विचारों ने तो उसको सकारात्मक रूप में प्रभावित किया, जबकि फ्रांसीसी व्यवस्था और लुई चौदहवें के विचारों ने उसको नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। लुई चौदहवें के केंद्रीकृत शासन के अधीन फ्रांस के लोगों को नाममात्र की स्वतंत्रता ही प्राप्त थी और सरकार की शक्तियों का निरंकुश प्रयोग ही लुई चौदहवें के द्वारा किया जा रहा था। फ्रांसीसी व्यवस्था के विपरीत मॉन्टेस्क्यू ने 1726 में इंग्लैंड की अपनी यात्रा के दौरान यह देखा कि इंग्लैंड निवासियों को काफ़ी सीमा तक उचित अर्थों में स्वतंत्रता प्राप्त थी। उसने स्पष्ट का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया कि क्यों इंग्लैंड निवासी स्वतंत्रता का उपभोग कर रहे थे और क्यों फ्रांस के लोग ऐसा नहीं कर रहे थे। फ्रांसीसी और ब्रिटिश शासन व्यवस्था का केंद्रीकरण था, फ्रांसीसी लोग स्वतंत्रता से विहीन थे। बाद में उसने अपनी पुस्तक द स्प्रिट शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, प्रमुख विचारक, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू के नाम से जुड़ा हुआ है, परंतु इसका विचार इसका यह अर्थ नहीं कि उससे पहले किसी दार्शनिक ने इसका समर्थन नहीं किया था। वास्तव में यह विचार राजनीति शास्त्र के पिता अरस्तू ने सबसे पहली बार दिया था। उसने सरकार के तीन विशिष्ट कार्यों, सोच, विचार, मजिस्ट्री और न्याय की पहचान की थी, परंतु उसने इनके पृथक्करण के पक्ष में तर्क नहीं दिए थे। शक्तियों के पृथक्करण के अन्य समर्थक, ब्रिटिश कानून शास्त्री ब्लैकस्टोन ने अपनी पुस्तक कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड में शक्तियों के पृथक्करण की धारणा को स्वीकार भी किया और इसके महत्व का वर्णन भी किया। उसको इसने सरकार की शक्तियों पर रोक लगाने और इनके दुरुपयोग रोकने का एक यंत्र माना। उसने यह भी माना कि शक्तियों का पृथक्करण जनता की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक था। दूसरे शब्दों में ब्लैकस्टोन ने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का जोरदार समर्थन किया और इसको जनता की सुरक्षा का रक्षा कवच माना। अमेरिकी संविधान के निर्माताओं विशेषकर मेडिसन, हैमिल्टन और जेफरसन ने इस सिद्धांत का पूर्ण समर्थन किया और यह माना कि लोगों की स्वतंत्रता की सबसे आवश्यक गारंटी और रक्षा कवच यही सिद्धांत हो सकता है। मेडिसन ने दृढ़ शब्दों में घोषित किया कि सभी शक्तियों अर्थात वैधानिक, कार्यपालिक और न्यायिक शक्तियों का एक ही हाथ में केंद्रीकरण निरंकुशता की परिभाषा थी। वर्जीनिया के संविधान को लिखते समय जेफरसन ने लिखा, इन शक्तियों का एक ही हाथ में केंद्रीकरण निरंकुश सरकार की परिभाषा है। द कंसंट्रेशन ऑफ दीज लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर्स इन द सेम हैंड्स इज प्रिसाइजली द डेफिनेशन ऑफ ए डेस्पोटिक गवर्नमेंट। इसी प्रकार कई अन्य राजनीतिक वैज्ञानिकों ने बाद में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के महत्व को स्वीकार किया और इसको अपनाए जाने की वकालत की। उन्होंने इस सिद्धांत को लोगों की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक माना और इस बात का समर्थन किया कि सरकार की तीनों शक्तियों को तीन अलग अलग अंगों को ही सौंपा जाना चाहिए। करण ही निरंकुशता के विरुद्ध एक रक्षा कवच बन सकता है और लोगों की शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का व्यवहार में प्रयोग, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। मॉन्टेस्क्यू के द्वारा शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत की व्याख्या किए जाने के पश्चात इस सिद्धांत ने लोगों, राजनीतिक वैज्ञानिकों और संवैधानिक विशेषज्ञों की सोच को प्रभावित करना आरंभ कर दिया। फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात जो अधिकारों की घोषणा स्वीकार की गई उसमें यह कहा गया था कि जिस समाज में शक्तियों का पृथक्करण नहीं है उसमें कोई संविधान नहीं है। फ्रांस के पहले गणतंत्र के संविधान 1791 में सरकार के तीनों अंगों में शक्तियों का पृथक्करण किया गया, परंतु इस सिद्धांत को तब एक अस्थायी धक्का पहुंचा जब नेपोलियन ने अपनी निरंकुशता की स्थापना कर ली। नेपोलियन के पश्चात इस सिद्धांत को फ्रांस पुनः स्वीकार किया गया और आज तक इसके महत्व को फ्रांसीसी संविधान में स्वीकार किया गया है। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का वास्तविक समर्थन अमेरिकी संविधान के निर्माताओं ने किया जब उन्होंने इसके महत्व को पूर्ण रूप से स्वीकार किया और इसको लोगों की स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी माना। उन्होंने इस सिद्धांत को अमेरिकी संविधान का प्रारंभिक सिद्धांत बनाया। अमेरिकी संविधान के अधीन स्थापित सरकार की संरचना शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। फाइनर ने यह लिखा कि अमेरिकी संविधान को तो सोच समझकर और व्यापक रूप में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर एक प्रस्ताव बनाया गया और आज भी अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली इसी सिद्धांत के आधार पर कार्य कर रही है। लिप्सन के शब्दों में, इतिहास ने दर्शन शास्त्र से हाथ मिलाया जब संघीय संविधान में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत लिखा गया। अकॉर्डिंग टू लिप्सन, History therefore joined hands with philosophy in writing a separation of powers into the federal constitution. Kilburn बनाम थॉम्पसन के मुकदमे 1880 के अपने निर्णय में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की व्याख्या करते समय यह स्वीकार किया कि शक्तियों का पृथक्करण संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता थी। अपने निर्णय में इसने लिखा कि अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली का एक सबसे बड़ा गुण यह था कि इसके संवैधानिक कानून के अनुसार सरकार की सभी शक्तियों को तीन अंगों, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका में बांटा गया है। इस संविधान के सफल व्यवहार के लिए आवश्यक है कि जिन व्यक्तियों को किसी एक अंग में शक्तियां मिली हुई हैं वे किसी दूसरे अंग की शक्तियों का प्रयोग करने का प्रयास न करें और प्रत्येक अंग अपनी निर्धारित और उचित शक्तियों का प्रयोग ही करें, न कि किसी अन्य की शक्तियों का। इन शब्दों से स्पष्ट रूप में यह बात सामने आती है कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत ही अमेरिकी संविधान का आधार है। अमेरिकी संविधान को शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित बनाए जाने के पश्चात इस सिद्धांत ने दूसरे राज्यों के राजनीतिक वैज्ञानिकों और संविधान निर्माताओं को और भी अधिक प्रभावित करना आरंभ कर दिया। 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अपनाई गई मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के अनुच्छेद 16 में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। वास्तव में आज के सभी लोकतांत्रिक संविधान एक या दूसरे ढंग से शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, विशेषतः न्यायपालिका के शेष दोनों अंगों से पृथक्करण को न्यायपालिका के स्वतंत्र अस्तित्व और व्यवहार की आवश्यक शर्त माना जाता है, जिसके आधार पर ही न्यायपालिका स्वतंत्रता के साथ कार्य करते हुए लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा करती है। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत आलोचनात्मक मूल्यांकन थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स क्रिटिकल इवैल्यूएशन। यद्यपि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत एक प्रसिद्ध और प्रचलित सिद्धांत है, परंतु इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। आलोचक इस सिद्धांत के निम्नलिखित त्रुटियों का वर्णन करते हैं। पहला, पूर्ण पृथक्करण संभव नहीं, कंप्लीट सेपरेशन इज नॉट पॉसिबल। सरकार एक आंगिक इकाई होती है और इसके तीन अंगों को कभी भी पूर्ण रूप से अलग नहीं किया जा सकता। कार्यपालिका, वैधानिक और न्यायिक कार्य अंतर्निर्भर और अंतक्रिया करने वाले कार्य होते हैं और इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। बिना परस्पर सहयोग के सरकार के तीनों अंग अपना कार्य नहीं कर सकते। दूसरा, पूर्ण पृथक्करण वांछित नहीं, कंप्लीट सेपरेशन इज नॉट डिजायरेबल। सरकार के तीन अंगों का पूर्ण पृथक्करण न तो संभव है और न ही यह उचित हो सकता है। यह इसलिए उचित नहीं रहता क्योंकि बिना परस्पर सामंजस्य और सहयोग के कोई भी अंग कुशलता और सफलता से अपना कार्य नहीं कर सकता। गैटल के शब्दों में प्रत्येक राज्य की सरकार एक इकाई होती है जो कि राज्य की इच्छा को प्रकट भी करती है और लागू भी करती है। इसीलिए सरकार के अंग चाहे अलग अलग ही क्यों न हो, उनमें सामंजस्य और सहयोग अत्यावश्यक होता है। पूर्ण पृथक्करण शक्तियों को बहुत बड़े रूप में सीमित कर सकता है और इसीलिए इसको अच्छा नहीं समझा जा सकता। तीसरा, अपने आप में अव्यवहारिक, इम्प्रैक्टिकेबल इन इटसेल्फ। शक्तियों के पृथक्करण को व्यवहार में लागू करना पूर्ण रूप से व्यवहारिक नहीं। कानून निर्माण का कार्य केवल विधान पालिका को ही नहीं सौंपा जा सकता। समय की आवश्यकता ने यह आवश्यक बना दिया है कि कार्यपालिका को भी प्रदत्त व्यवस्थापन अधीन कानून निर्माण का कार्य सौंपा जाए। इसी प्रकार न्यायाधीशों के द्वारा अपने निर्णयों में कानून की व्याख्या करते समय कानून निर्माण करने और अपने न्याय बुद्धि के आधार पर निर्णय करने करके कानून निर्माण करने की प्रक्रिया को भी नहीं रोका जा सकता। इसके साथ ही सरकार के किसी भी अंग को बिना दूसरे अंगों से शामिल हुए अपना अलग शासन नहीं चलाने दिया जा सकता। चौथा, गैर ऐतिहासिक, अनहिस्टोरिकल। मॉन्टेस्क्यू ने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत की रचना करते समय ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था को एक आधार माना, जबकि वास्तविकता यह है कि ब्रिटेन में कभी भी शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत प्रचलित नहीं रहा। इंग्लैंड में उस समय संसदीय प्रणाली अस्तित्व में आ चुकी थी जब मॉन्टेस्क्यू ने इंग्लैंड का दौरा किया था और वहां के लोगों को स्वतंत्रता का आनंद भोगते हुए पाया था। उस समय भी संसदीय व्यवस्था अधीन ब्रिटिश संसद और कैबिनेट में गहरा संबंध था और ब्रिटेन में तो संसद का ऊपरी सदन अर्थात लॉर्ड सदन देश के सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य कर रहा था। ब्रिटेन में क्राउन कार्यपालिका वैधानिक और न्यायिक शक्तियों का प्रयोग कर रहा था, परंतु न तो इंग्लैंड में निरंकुशता थी और न ही नागरिकों के अधिकार असुरक्षित थे। दूसरे शब्दों में न तो मॉन्टेस्क्यू के समय और न ही आज तक ब्रिटेन में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत प्रचलित है। ब्रिटेन में लोगों की स्वतंत्रता के पीछे जो सिद्धांत कार्य कर रहा है वह है कानून का शासन, दैट इज रूल ऑफ लॉ, न कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। इंग्लैंड में तो कार्यपालिका का गठन संसद से ही में से ही किया जाता है और कार्यपालिका निरंतर संसद के समक्ष उत्तरदायी नहीं होती है। पांचवा, सरकार के तीनों अंग एक समान नहीं होते, द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर नॉट इक्वल। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत इस बात को मान लेता है कि सरकार के तीनों अंग एक समान है, जो कि उचित नहीं। राज्य की विधान पालिका को सदैव सबसे महत्वपूर्ण और प्रारंभिक माना जाता है। सरकार का कार्य कानून निर्माण से ही आरंभ होता है। वास्तविक व्यवहार में कार्यपालिका को सरकार का सबसे अधिक शक्तिशाली और सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, क्योंकि यह अंग ही कल्याणकारी राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने का दायित्व निभाता है। शक्तियों के आधार पर न्यायपालिका को सरकार का एक कमजोर अंग माना जाता है, परंतु लोगों की दृष्टि में यह अंग सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग होता है। इस प्रकार सरकार के तीनों अंग न तो समान होते हैं और न इनको एक ही जैसा सम्मान प्राप्त होता है। लॉस्की के अनुसार कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों सदैव संसद के द्वारा घोषित कानूनों और इच्छाओं के द्वारा सीमित होती हैं। विधान पालिकाएं कभी भी अपना कार्य नहीं कर सकती जब तक वह कार्यपालिका पर नियंत्रण न रखे। फिर बहुत बार विधान पालिका को कानून और संविधान में संशोधन करके कार्यपालिका या न्यायपालिका के द्वारा किए गए निर्णय को बदलना भी पड़ता है। इस प्रकार तीनों अंगों को बिल्कुल एक समान समझना उचित नहीं है। छठा, शक्तियों के पृथक्करण से अकुशलता और गतिरोध पैदा हो सकते हैं. सेपरेशन ऑफ पावर कैन लीड टू डेडलॉक्स एंड इनएफिशिएंसी. यदि सरकार के तीनों अंगों में शक्तियों का पृथक्करण कर दिया जाए तो सरकार के कार्यों में अकुशलता आ सकती है और तीनों अंग आपसी टकराव में उलझ सकते हैं. पृथक्करण ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है जिसमें सरकार का एक अंग दूसरे अंगों से रुकावटों या गतिरोधों में उलझ सकता है. विधानपालिका के द्वारा पारित किए गए कानूनों की कार्यपालिका उपेक्षा करने का प्रयास कर सकती है और कानूनों को उचित ढंग से लागू न करके कानून निर्माण के कार्य को असफल बना सकती है. यदि सरकार का प्रत्येक अंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाए तो वह अपना अपना कार्य ही करेगा और इस स्थिति में उनमें परस्पर टकराव, रुकावट या गतिरोध पैदा हो जाएंगे. जे एस मिल ने जोरदार शब्दों में यह कहा है कि प्रत्येक अंग का दूसरे दोनों से पृथक्करण सदैव अकुशलता और गतिरोधों को पैदा करेगा. लॉस्की का भी मत है कि पृथक्करण विरोधों, शंकाओं और ईर्ष्याओं को पैदा करेगा और तीनों अंगों में आंतरिक झगड़ों को प्रोत्साहित करेगा. सातवां, स्वतंत्र शक्तियों के पृथक्करण पर ही निर्भर नहीं, स्वतंत्रता शक्तियों के पृथक्करण पर ही निर्भर नहीं करती. लिबर्टी डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन सेपरेशन ऑफ पावर्स. आलोचक इस तर्क को रद्द करते हैं कि शक्तियों का पृथक्करण स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा रक्षा कवच हो सकता है. वे तर्क देते हैं कि यदि शक्तियों का पृथक्करण तो हो परंतु नागरिकों को न तो मौलिक अधिकार मिले हो, न न्यायपालिका स्वतंत्र हो, न कानून का शासन हो, न आर्थिक समानता हो और न लोकतंत्रीय भावना हो तो कभी भी स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती. संसदीय व्यवस्था वाले राज्यों जैसा कि भारत, इंग्लैंड, जापान आदि में विधानपालिका और कार्यपालिका दोनों में दृढ़ संबंध है परंतु इनमें भी लोगों की स्वतंत्रता सुरक्षित होती है क्योंकि स्वतंत्रता की शेष आवश्यक शर्तें विद्यमान होती हैं. इसलिए यह कहना गलत है कि स्वतंत्रता का अस्तित्व शक्तियों के पृथक्करण पर निर्भर करता है. आठवां, यह सिद्धांत खतरनाक परिणाम पैदा कर सकता है. दिस थ्योरी कैन लीड टू डेंजरस रिजल्ट्स. वास्तविक व्यवहार में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत एक सरकार के भीतर तीन सरकारों के अस्तित्व की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, अर्थात वैधानिक सरकार, कार्यपालिक सरकार और न्यायिक सरकार. ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप में गतिरोध, संवैधानिक विरोध, अकुशलता और ईर्ष्याओं का बाजार गर्म हो जाएगा. तीनों अंग सरकार के कार्य को अपनी अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर सकते हैं और इस स्थिति में तीनों अंगों का कार्य ही बुरी प्रकार से प्रभावित हो सकता है. तीनों अंगों में तालमेल और सहयोग की अनुपस्थिति काफी खतरनाक हो सकती है, विशेषतः संकटकालीन समय में. फिर इस सिद्धांत के अधीन प्रत्येक अंग अपनी अपनी निरंकुशता स्थापित करके लोगों की स्वतंत्रता को हानि पहुंचा सकता है. विधानपालिका कानून निर्माण करते समय स्वेच्छाचारी बन सकती है और कार्यपालिका कानूनों को लागू करते समय निरंकुश व्यवहार अपना सकती है. इस प्रकार शक्तियों के पृथक्करण से खतरनाक परिणाम पैदा हो सकते हैं. नौवां, कार्यों का पृथक्करण न कि शक्तियों का पृथक्करण. सेपरेशन ऑफ फंक्शंस एंड नॉट ऑफ पावर्स. कई आलोचक यह मत देते हैं कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत ही एक गलत नाम है क्योंकि वास्तव में यह सिद्धांत कार्यों के पृथक्करण की वकालत करता है. सरकार एक इकाई होती है, उसकी शक्ति भी एक इकाई होती है और इसको अलग नहीं किया जा सकता. सरकार के तीनों अंगों के कार्यों के पीछे एक ही शक्ति अर्थात समुचित रूप में सरकार की शक्ति होती है. इस प्रकार शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत वास्तव में कार्यों के पृथक्करण का सिद्धांत है और इस रूप में इसके महत्व का मूल्यांकन किया जा सकता है. इन सभी तर्कों के आधार पर आलोचक शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत की तीखी आलोचना करके इसको रद्द करने की मांग करते हैं. लोकतंत्र पक्षी विचारक इस सिद्धांत को इसलिए आलोचना करते हैं कि यह लोकतंत्र ढंग से संगठित विधानपालिका और कार्यपालिका में अविश्वास प्रकट करता है और एक दूसरे पर रोक लगाने की बात करता है ताकि नागरिकों की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे. आलोचक यह भी मत देते हैं कि वर्तमान समय जो कि एक कल्याणकारी राज्य अस्तित्व में आ चुका है, इस सिद्धांत को लागू भी नहीं किया जा सकता. इस प्रकार के शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध कई तर्क दिए जाते हैं. इस बात के बारे में कोई संदेह नहीं कि शक्तियों का पूर्ण और कठोर पृथक्करण न तो संभव है और न ही यह लाभप्रद रह सकता है. सरकार के तीनों अंगों को बिल्कुल अलग अंग नहीं बनाया जा सकता. सरकार एक इकाई है, एक आंगिक इकाई है और इसके तीनों अंगों को आपस में संबंधित और अंतर्निर्भर होना ही होता है. यह भी स्वीकार किया जा सकता है कि स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए केवल शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत ही लाभप्रद नहीं रह सकता. स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए तो कई एक सिद्धांतों या रक्षा कवचों की आवश्यकता होती है. इसके साथ ही आज यह भी स्वीकार किया जा चुका है कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत अपने आप में पूर्ण सिद्धांत नहीं है क्योंकि इसको बिना रोको और संतुलन दैट इज चेक्स एंड बैलेंसेस के सिद्धांत के साथ मिश्रित करके लागू नहीं किया जा सकता. जिन भी राज्यों ने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया है उन्होंने इसके साथ ही निषेधों और संतुलन के सिद्धांतों को भी अपनाया है. फिर व्यवहार में राज्य कार्यों का पृथक्करण करते हैं, शक्तियों का पृथक्करण नहीं. इस प्रकार शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का हम समर्थन कर सकते हैं क्योंकि सरकार के तीनों कार्यों में पृथकता करनी आवश्यक भी होती है और लाभप्रद भी. ऐसा करना शक्तियों के केंद्रीकरण को रोकने के लिए भी आवश्यक होता है. इस सिद्धांत का महत्व इस बात के लिए भी है क्योंकि यह लोगों की स्वतंत्रता के लिए सरकार के तीनों अंगों के द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को रोकने की वकालत करता है। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत वास्तव में कार्यों के पृथक्करण का सिद्धांत बनकर व्यवहार में लागू किया जा सकता है, और इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि सिद्धांत को निषेधों और संतुलन के रिचेक्स एंड बैलेंसेस के सिद्धांत से पूर्ण करके ही लागू किया जाए। रोकों और संतुलन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का अध्ययन तब तक अधूरा रहता है जब तक हम रोकों और संतुलन के सिद्धांत का अध्ययन न करें, क्योंकि इस सिद्धांत से मिलकर ही शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत व्यवहार में लागू हो सकता है। मेडिसन के शब्दों में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत इस बात की मांग नहीं करता कि विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को बिल्कुल असंबंधित रखा जाए, परंतु जब तक सरकार के तीनों अंगों को एक दूसरे से मिलाकर प्रत्येक को दूसरे पर कुछ संवैधानिक नियंत्रण शक्ति नहीं दी जाती है, तब तक उस स्तर का पृथक्करण जो कि यह सिद्धांत स्वतंत्र सरकार के अस्तित्व के लिए मांग करता है प्राप्त नहीं की जा सकता। रोक और संतुलन का सिद्धांत यह मत देता है कि किसी भी अंग की शक्ति बिना रोक से नहीं होनी चाहिए। एक अंग की शक्ति पर दूसरे अंगों को रोक शक्तियां प्राप्त होनी चाहिए ताकि सरकार के संगठन और कार्य प्रणाली में एक संतुलन सदैव बना रहे और कोई भी अंग अपनी शक्तियों का प्रयोग मनमर्जी से करने के योग्य न हो। कानून निर्माण शक्ति विधानपालिका के पास होनी चाहिए, परंतु इस पर कार्यपालिका और न्यायपालिका को कुछ रोक शक्तियां प्राप्त होनी चाहिए ताकि विधानपालिका अपनी शक्ति का प्रयोग स्वेच्छा से न कर सके। इसी प्रकार कार्यपालिका शक्तियों को तो कार्यपालिका के पास होना चाहिए, परंतु विधानपालिका और न्यायपालिका को इस पर कुछ रोक शक्तियां प्राप्त होनी चाहिए। ऐसी ही स्थिति न्यायपालिका की भी होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में सरकार के प्रत्येक अंग को शेष दो अंगों पर रोक शक्तियां प्राप्त होनी चाहिए और तीनों अंगों में एक संवैधानिक संतुलन की स्थिति बनाए रखी जानी चाहिए। रोको और संतुलन का सिद्धांत दो प्रारंभिक सिद्धांतों पर आधारित है। पहला, शक्ति भ्रष्ट करती है। असीमित शक्ति असीमित रूप में भ्रष्ट करती है। Power corrupts and absolute power corrupts absolutely. इसका अर्थ है कि किसी भी एक अंग को एक विशेष क्षेत्र में असीमित शक्ति प्राप्त नहीं होनी चाहिए। शक्ति ही शक्ति को सीमित कर सकती है, ये इसका दूसरा आधार है। Power alone can be the antidote to power. यदि शक्ति का दुरुपयोग न होने दिया जाए तो यह आवश्यक होता है कि एक अंग को प्राप्त शक्ति पर दूसरे अंगों की रोक शक्ति होनी चाहिए। सरकार के किसी भी अंग को अपने क्षेत्र में असीमित शक्ति नहीं प्राप्त होनी चाहिए। प्रत्येक अंग को दूसरे पर रोक शक्तियां प्राप्त होनी चाहिए। रोक और संतुलन के सिद्धांत की प्रकृति और आधार की व्याख्या करते हुए ईबी सुल्ज लिखता है, रोक और संतुलन का सिद्धांत सामान्यतः शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का पूरक सिद्धांत है। इसकी प्रमुख विशेषता यह विचार है कि सरकार के तीनों में से प्रत्येक अंग को दूसरे अंगों की शक्तियों पर एक नियंत्रण शक्ति मिलनी चाहिए ताकि एक अंग का प्रभावी कार्य दूसरे अंग के समर्थन के आधार पर ही संभव हो। दूसरे शब्दों में शक्तियों के पृथक्करण और रोक और संतुलन के सिद्धांत सदैव साथ साथ चलते हैं। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत यह मांग करता है कि सरकार के तीनों अंगों को एक दूसरे से अलग होना चाहिए, और रोक और संतुलन का सिद्धांत यह मांग करता है कि तीनों अंगों में परस्पर संबंधों के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक अंग को शेष दो अंगों पर कुछ रोक शक्तियां प्राप्त हो ताकि सरकार के तीनों अंग एक संतुलित रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग करें। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान शक्तियों के पृथक्करण और रोक और संतुलन के सिद्धांतों पर आधारित संविधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में शक्तियों का पृथक्करण और रोकों और संतुलनों की व्यवस्था, सिस्टम ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेस इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत, जैसा कि इसकी व्याख्या मॉन्टेस्क्यू ने की, को सबसे अधिक और महत्वपूर्ण व्यवहारिक समर्थन यूएसए के संविधान निर्माताओं ने दिया। उन्होंने इस सिद्धांत को न केवल सीमित सरकार की व्यवस्था की रचना के लिए एक आधार बनाया, बल्कि इसके साथ ही इसको लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए भी एक सिद्धांत के रूप में अपनाया। उन्होंने इस सरकार के प्रत्येक अंग को
अलग अलग शक्तियां भी सौंपी और प्रत्येक अंग को दूसरे पर कुछ रोक शक्तियां भी सौंपी। तीन अमरीकी संविधान निर्माताओं मेडिसन, हैमिल्टन और जेफरसन ने इस सिद्धांत की जोरदार वकालत की और इस सिद्धांत को सरकारी संरचना का एक प्रारंभिक नींव पत्थर माना। उनके विचारों से प्रभावित होकर ही फिलाडेल्फिया महासभा में शामिल अमरीकी संविधान निर्माताओं ने इस सिद्धांत को अमरीकी संविधान में अपनाया। मॉन्टेस्क्यू के विचारों ने अमरीकी संविधान निर्माताओं को निरंतर प्रभावित किया। यद्यपि संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान का कोई भी अनुच्छेद शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत की परिभाषा, व्याख्या और समर्थन नहीं करता, तो भी संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर इस सिद्धांत की विद्यमानगी दिखाई देती है। अमरीकी संविधान के द्वारा शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाए जाने के बारे में हरमन फाइनर ने लिखा है कि अमरीकी संविधान को सोच समझ कर शक्तियों के पृथक्करण पर एक व्यापक प्रस्ताव बनाया गया और आज संयुक्त राज्य अमरीका दुनिया का वह महत्वपूर्ण राज्य है जिसमें कि इस सिद्धांत पर आधारित संविधान सफलता से कार्य कर रहा है। इस प्रकार लिप्सन ने भी लिखा है कि इतिहास ने दर्शन शास्त्र के साथ हाथ मिलाकर संघीय संविधान में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को लिखा। अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई एक निर्णयों में स्पष्ट रूप में यह घोषित किया है कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था का एक प्रारंभिक सिद्धांत है। इस बात को भी सभी स्वीकार करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की प्रकृति के बारे में दृढ़ रूप में कोई बात कहने का सबसे अधिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को है, क्योंकि यही संविधान के संरक्षक और व्याख्याकार है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के पहले 3 अनुच्छेद स्पष्ट रूप में संविधान के द्वारा की गई शक्तियों के पृथक्करण को प्रकट करते हैं। पहला, वैधानिक शक्तियाँ कांग्रेस के पास है। अमेरिका के संविधान के पहले अनुच्छेद में लिखा गया है कि सभी कानून निर्माण शक्तियां अमेरिकी कांग्रेस के पास ही होगी, जिसमें एक सीनेट और एक प्रतिनिधि सदन शामिल हैं। इस प्रकार सभी कानून निर्माण शक्तियां अमेरिकी कांग्रेस के पास है और इनका प्रयोग दोनों सदन मिलकर करते हैं। कांग्रेस का सदस्य किसी भी दूसरे अंग का सदस्य नहीं बन सकता। कार्यपालिका का कोई सदस्य कांग्रेस का सदस्य नहीं हो सकता और ना ही कांग्रेस का सदस्य अमेरिकी कार्यपालिका का सदस्य हो सकता है। जिसने कार्यपालिका का सदस्य बनना होता है वह या तो कांग्रेस का सदस्य होता है ही नहीं, या फिर कांग्रेस की सदस्यता छोड़ने के पश्चात ही कार्यपालिका का सदस्य बनता है। दूसरा, कार्यपालिका शक्तियाँ कांग्रेस राष्ट्रपति के पास है। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 में कार्यपालिका को कांग्रेस से अलग रखा गया है और अमेरिकी राष्ट्रपति को सभी कार्यपालिका शक्तियों का स्वामी बनाया गया है। अनुच्छेद 2 में लिखा गया है कि सभी कार्यपालिक शक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति ना तो कांग्रेस का सदस्य होता है और ना ही कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होता है। ना ही राष्ट्रपति कांग्रेस को भंग कर सकता है और ना ही कांग्रेस आसानी से राष्ट्रपति को पद से हटा सकती है। तीसरा, न्यायिक शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 3 में यह लिखा गया है कि सभी न्यायिक शक्तियां अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय और उनसे निम्न न्यायालयों के पास होंगी, जिनको कि कांग्रेस समय समय पर स्थापित करेगी। अमेरिकी न्यायपालिका एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसको प्रत्येक प्रकार के विधानपालिका और कार्यपालिका से अलग रखा गया है। इस प्रकार अमेरिकी संविधान स्पष्ट रूप से कांग्रेस राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय में शक्तियों के पृथक्करण को प्रभावी रूप में स्थापित करता है। अमेरिकी संविधान में रोक और संतुलन की व्यवस्था, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस इन द US कॉन्स्टिट्यूशन। जब अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाकर अमेरिका के संविधान की रचना की तो उन्होंने इसके साथ साथ रोक और संतुलन के सिद्धांत को भी अपनाया। उनको यह पता था कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत ना तो अपने आप में पूर्ण था और ना ही अपने आप में व्यवहारिक। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि तीनों अंगों में शक्तियों का बिल्कुल पृथक्करण लाभप्रद नहीं रह सकता और इस बात की बड़ी आवश्यकता थी कि तीनों अंगों को एक दूसरे से कुछ सीमा तक संबंधित भी रखा जाए और प्रत्येक अंग को दूसरे पर कुछ रोक शक्तियां भी सौंपी जाएं। अमेरिकी संविधान में इसलिए शक्तियों के पृथक्करण के साथ साथ रोक और संतुलन की एक व्यवस्था विद्यमान है। अमेरिकी संविधान के पहले 3 अनुच्छेद जहाँ कांग्रेस राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय में शक्तियों के पृथक्करण की व्यवस्था करते हैं, वहाँ से वे रोकों और संतुलन की व्यवस्था भी करते हैं। इन तीनों अंगों को एक दूसरे पर रोक शक्तियां प्राप्त है, जिनका वर्णन निम्नलिखित के अनुसार किया जा सकता है। पहला, राष्ट्रपति कार्यपालिका पर कांग्रेस विधानपालिका को प्राप्त रोक शक्तियां। पहला, राष्ट्रपति के द्वारा की गई सभी नियुक्तियों पर सीनेट की स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है। सीनेट की स्वीकृति के बिना राष्ट्रपति कोई भी नियुक्ति नहीं कर सकता। यदि राष्ट्रपति कोई नियुक्ति करता है और सीनेट उस नियुक्ति को स्वीकार नहीं करती तो ऐसी नियुक्ति रद्द हो जाती है। दूसरा, राष्ट्रपति दूसरे देशों में जो संधियां करता है उन पर सीनेट कि 2/3 बहुमत से स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। सीनेट ऐसी स्वीकृति देने से इनकार करके राष्ट्रपति के द्वारा की गई किसी संधि को रद्द कर सकती है। तीसरा, राष्ट्रपति धन के लिए कांग्रेस पर निर्भर करता है। कांग्रेस ही बजट पास करती है और राष्ट्रपति को प्रशासन के लिए व्यय करने की आज्ञा देती है। चौथा, कांग्रेस राष्ट्रपति को महाभियोग का मुकदमा चला के पद से हटा सकती है। पांचवा, सरकारी विभागों की कार्यों और कारगुजारी की जांच पड़ताल करने के लिए कांग्रेस के दोनों सदनों जांच पड़ताल समितियां स्थापित कर सकते हैं। छठा, युद्ध की घोषणा करने का अधिकार कांग्रेस को ही है। युद्ध के लिए तैयारी करना और युद्ध लड़ना तो राष्ट्रपति का दायित्व है, परंतु युद्ध की घोषणा करनी कांग्रेस का अधिकार है। सातवां, संविधान में संशोधन करने का अधिकार कांग्रेस को ही है और कांग्रेस संवैधानिक संशोधन 3/4 राज्यों की स्वीकृति से ही कर सकती है। राष्ट्रपति को संविधान की संशोधन प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं दी गई। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका पर कांग्रेस विधानपालिका की रोक शक्तियां। पहला, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति कांग्रेस के ऊपरी सदन सीनेट की स्वीकृति से करता है, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कांग्रेस महाभियोग का मुकदमा चलाकर हटा सकता है, तीसरा कांग्रेस की कानून पास करने के लिए निम्न न्यायालयों को स्थापित कर सकती है और उनको अधिकार क्षेत्र सौंप सकती है, तीसरा कांग्रेस पर राष्ट्रपति की रोक शक्तियां, कांग्रेस के द्वारा पास बिल तभी कानून बनते हैं राष्ट्रपति उन पर हस्ताक्षर करता है, ख कांग्रेस के द्वारा पास बिलों पर राष्ट्रपति स्थगन वीटो की शक्ति का प्रयोग कर सकता है, यदि राष्ट्रपति कांग्रेस के द्वारा पारित बिल पर 10 दिन के भीतर स्थगन वीटो लागू करके इसको कांग्रेस के पास वापस भेज दे तो कांग्रेस को यह बिल्कुल पुनः 2/3 बहुमत से पास करना पड़ता है, नहीं तो यह कानून नहीं बन सकता, तीसरा ख ग कांग्रेस के अधिवेशन के अंतिम 10 दिनों के अंदर राष्ट्रपति को कांग्रेस के द्वारा पारित बिलों को पूर्ण रूप से रद्द करने की शक्ति प्राप्त होती है और इसको राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति कहा जाता है, घ कानून निर्माण की शक्ति तो कांग्रेस के पास है परंतु कानूनों को लागू करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है और राष्ट्रपति शक्ति का प्रयोग करके किसी नापसंद कानून को खारिज कर सकता है, चौथा न्यायपालिका पर राष्ट्रपति की रोक शक्तियां, क न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया राष्ट्रपति से आरंभ होती है, राष्ट्रपति ही एक न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रस्ताव करता है, यदि इसको सीनेट की स्वीकृति मिल जाती है तो संबंधित व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त हो जाता है, ख राज्य के मुखिया के रूप में राष्ट्रपति किसी भी अपराधी का दंड माफ कर सकता है या कम कर सकता है या मुलतवी कर सकता है या फिर आम माफी दे सकता है, पांचवा राष्ट्रपति और कांग्रेस पर न्यायालय की रोक शक्तियां, क कांग्रेस के द्वारा पारित कानूनों पर न्यायिक पुनरीक्षण करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है और सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर सकती है, ख राष्ट्रपति के द्वारा जारी आदेशों के संबंध में भी सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग कर सकती है और इसके अधीन राष्ट्रपति के किसी भी आदेश को असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर सकती है, ग संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है, इस अधिकार का प्रयोग करके सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस और राष्ट्रपति की शक्तियों की व्याख्या कर सकता है, इसके द्वारा किया गया निर्णय कांग्रेस और राष्ट्रपति पर लागू होता है, घ जब राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग मुकदमे की सुनवाई के लिए सीनेट की बैठक होती है तो इस बैठक की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है, इस प्रकार अमरीकी संवैधानिक व्यवस्था अधीन कांग्रेस राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय को एक दूसरे पर रोक शक्तियां प्राप्त है, निष्कर्ष इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमरीका का संविधान शक्तियों के पृथककरण और रोक और संतुलन के सिद्धांतों पर आधारित संविधान है, इन दोनों संविधानों का व्यावहारिक रूप हमें संयुक्त राज्य अमरीका की राजनीतिक व्यवस्था में मिलता है, ऑग और रे ने यह विचार दिया है कि शक्तियों के पृथककरण के साथ साथ रोक और संतुलन की व्यवस्था अमरीकी सरकार की सबसे बड़ी विशेषता है, यह दोनों सिद्धांत ही अमरीकी संविधान के दो प्रमुख नींव पत्थर हैं।